सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूं। अथ नत्वार्हतो क्षुण चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेशते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक श्रावकाचार का ग्रंथ है और उसमें भी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 77 पर, 77। 31 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी श्लोक, और उसका विशेषार्थ चल रहा था। यहाँ जिन पूजे की बात चल रही है, अष्टद्रव्यों से जिन इंद्र भगवान की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले स्थापना बताई है। सामने साक्षात मूर्ति विराजमान है, प्रतिमा विराजमान है। यदि न हो तो अतदाकार स्थापना भी पुष्प में, वो लौ में या अक्षत में की जा सकती है। मुख्य बात यह है कि गुणों में अनुराग का ही नाम भक्ति है। यदि उनके गुण ही पता नहीं है, मात्र किसी के सामने मस्तक झुकाना, स्तुति बोलना, नमस्कार करना, आरती उतारना, और उनके गुणों का कुछ पता नहीं है, तो कहते वो तो सच्ची भक्ति भी नहीं होगी। यहाँ हम आए थे नीचे से 10-12 कुछ लाइन होगी, 3, 6, 3, 9, 10। यहाँ बता रहे कि द्रव्य की शुद्धता, यानी कौन से द्रव्य की बात चल रही है, तो भक्ति पूर्वक स्थापना के बाद शुद्ध द्रव्य से जिनेन्द्र की पूजा की जाती है। ये द्रव्य ने अष्ट द्रव्य की बात है। और द्रव्य की शुद्धता दो बातों पर निर्भर है। वह द्रव्य जबरदस्ती किसी से छीना गया न हो, उसमें हार्दिकता हो, यानी भक्ति पूर्वक उसको लाया गया हो, अपने या दूसरों के खाने से बचा हुआ न हो इत्यादि। दूसरे यानी दूसरी बात, निष्पाप साधनों से तैयार किया गया हो, बाजारू, गला सड़ा या बासी आदि न हो, प्रासुक जल से सावधानी पूर्वक बनाया गया हो, आरंभ बहुल न हो, यानी जिसके बनाने में कुछ हिंसा होती है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह शरीर से द्रव्य का अर्पण करने के साथ, शरीर से नहीं हाथों से हम चढ़ाते हैं द्रव्य, वचन से पूजन पढ़ते हुए यानी मुंह से बोलेंगे पूजा, और मन को संगीत पूर्वक पढ़ी जाने वाली पूजन में वर्णित भगवान के गुणों में लगाते हुए, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हमें मन के द्वारा उसका अर्थ सोचकर उसमें अपना मन लगाना चाहिए। ऐसे पूजन करने से मनोवचन काय की एकाग्रता के साथ समय दर्शन की विशुद्धि होती है। और एक दर्शन विशुद्धि का भी उत्कर्ष तीर्थंकर नामक पुण्य विशेष के बंध का कारण होता है, यह सब जानते हैं। कहा है विश्वेश्वर पद के कारण। ये विश्वेश्वर किसको कहा है? विश्वेश्वर है नहीं क्या? अरिहंत और सिद्ध, आप क्या कहते हैं?
तीर्थंकर।
क्योंकि विश्वेश्वर पद के कारण हो, ऐसी बात है ना, दर्शन विशुद्धि की बात है, जिससे विश्वेश्वर पद मिलता है उसका अर्थ क्या है? तीर्थंकर पद मिलता है। तो विश्वेश्वर, ये विश्वेश्वर शब्द यहाँ आया था, गाथा में आया होगा, विश्वेश्वर पदत्व ऊपर जो रेफरेंस गाथा है ना, रेफरेंस श्लोक उसमें आया है। विश्वेश्वर पद विश्वेश्वरत्व पद चारण कारणानि। तो कहते विश्वेश्वर पद के कारण, कारण इन्हें कारणभूत ऐसे दर्शन विशुद्धि आदि की आराधना करके, आराधना करने नहीं उसके पूजा नहीं करना, वो प्रकट करना। और दर्शन विशुद्धि किसको कहा है? समय दर्शन की विशुद्धि, उसको दर्शन विशुद्धि कहा। अद्भुत शक्तिशाली आत्मा समग्र कर्मों का निर्मूलन करने के लिए तीर्थंकर कर्म का बंध करता है। अब व्रत से भूषित, ये भू हो गया, उसका भू करना है। व्रत से भूषित जिन पूजक के इष्टफल विशेष की सिद्धि होती है, यह कहते हैं। यानी जिनेन्द्र भगवान का पूजक कैसा लिया है? व्रती, व्रत से भूषित। यानी यहाँ अकेले मिथ्या दृष्टि व्रत वाला नहीं लिया, सम्यक तो पहले में पहली कंडीशन तो चालू ही है, उसके साथ साथ व्रत अंगीकार किया हुआ है। 32 नंबर का श्लोक। दुःखूतमपि अष्टारम् अर्हतोऽभ्युदय श्रिय श्रयन्त्यहं पूर्विकया किं पुनर्व्रत विभूषितम्। व्रत भूषितम्, जब समय दर्शन से पवित्र भी जिन भगवान के पूजक को पूजा धन आज्ञा और ऐश्वर्य से युक्त परिवार काम भोग आदि संपदा मैं पहले करके प्राप्त होती है, यानी सब शीघ्र मिल जाती है। किसको? केवल समय दृष्टि को मिलता है। जो व्रत का अंगीकार नहीं किया ऐसा समय दृष्टि लिया तो उसके भी ये सहज रूप से मिलती है, क्योंकि उसके वैसा पुण्य का बंध होता है। तो कहते तब यदि वह एक देश से हिंसा आदि के त्याग रूप व्रतों से भूषित हो तो कहना ही क्या है। इसका अर्थ यदि वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो तो उसके उस जाति का पुण्य और बंधेगा, चौथे की अपेक्षा पांचवे में विशुद्धि ज्यादा होगी। अर्थात व्रती पूजक को भोग संपदा और भी विशेष रूप से प्राप्त होगी। हम देखिए उसकी अपेक्षा मुनियों को और भी पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य बंधेगा। यानी देवों में तो होती होते वहां से नीचे आकर मनुष्य में भी राजा आदि पद की प्राप्ति होती है। आगे जिन पूजा में आने वाले विघ्नों को दूर करने का उपाय बताते हैं। 33 नंबर। यथा स्वम दान मानाद्यय सुखी कृत्य विधर्मण स्वधर्मण स्वसात्कृत्य सिद्धर्थी यजतां जिनम। जिन पूजा की संपूर्णता के इच्छुक पूजक को अन्य धर्मावलंबियों को यथा योग्य दान सम्मान आदि के द्वारा, ये पात्र दान की बात नहीं है, उनकी शांति का केस कहते अनुकूल बनाकर, यानी वो हमें विघ्न न करे इस तरह से अन्य धर्मियों को। देखो फिर से, जिन पूजा की संपूर्णता के इच्छुक पूजक को, यानी ये तो समय दृष्टि है, पांचों गुण सामर्थ्य है और वो जिन पूजा निर्विघ्न पार पाड़ना चाहता है, अन्य धर्मावलंबियों को यथा योग्य दान सम्मान आदि के द्वारा अनुकूल बनाकर और साधर्मियों को अपने साथ में लेकर,
यथा योग्य दान सम्मान देना उसको,
जिन भगवान की पूजा करनी चाहिए।
गणपति वाले आते हैं तो
उसके बाद कहाँ है?
अन्य धर्म वाले वही है।
अभी वो आपकी कुछ मांगते हैं,
तो नहीं दोगे तो झगड़ा करते हैं।
नहीं है, उसको बता दें ना, आप अपनी भाषा में बता दें।
झगड़ा करें वो बात अलग है, यहाँ कह रहे आप पूजा करना चाहते हैं, पूरा विधि करना चाहते हैं, कुछ समय अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो उसको नाम देखिए, उसको शांति करो।
अन्य धर्मों उनके दान करो ऐसा नहीं कहा।
आप धंधा कर रहे हो, वहाँ आके कोई मांग रहा है तो आप क्या धंधा ठीक ठाक चले इसलिए दे रहे हो? इंजन ठीक तरह से होने के लिए नहीं, आप फिर से पढ़ना इसलिए मैं बोला ये बहुत खतरनाक।
अपना घर ठीक ठीक चले इसलिए, आप दुकान चले, घर चले, वो पूजा चले,
दोनों अलग बात है।
यानी उनके भगवान को पूजन करो ऐसा नहीं कह रहे, दान वही से कर सकते,
वो जो बोलते चंदा देव हमारे,
वो बात अलग है, वो उनके भगवान के नाम पर मांग रहे हैं आपको, आपके पूजा में वो नहीं रह रहे, आप वहाँ पूजा नहीं कर रहे हो, ख्याल में आती बात, जैसे आप सार्वजनिक पूजन करना चाहते उसकी बात है, सार्वजनिक करना चाहते हैं और वो हम कहते हैं वहां तो सभी वो आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके प्रेम से बर्ताव करो, यही उनको पैसे दो ऐसे, अभी उस जमाने में क्या होता होगा पता नहीं है, अभी ऐसे तो यहाँ तो हम अन्य मतियों को तो चंदा मांगेंगे तो देते नहीं है, धर्म के नाम पर मांगने वालों को तो बिल्कुल नहीं देते।
देखो घर चलाना दुकान चलाने ये पाप भाव है, और पूजन करना फर्क आया ना,
मैंने अपने मन की शांति के लिए
ये तो फॉर्मेट है।
ये चंदा वाले जो है अभी घर में आते तो ठीक है, आप बंद दरवाजे के अंदर, वो तो कुछ करेगा नहीं आपको, डिस्पेंसरी में बता, डिस्पेंसरी में बैठती थी मैं तो अकेली महिला और पूरा ओपन, और वहां तो आते थे झुंड के झुंड, दस दस पंद्रह पंद्रह लोग, चंदा दे दो और झगड़ा करने लगते थे, आपने लास्ट ईयर दिया था इस ईयर दे दो, उन्हें निकाल के दे दो। मैं 20 साल से 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने कभी किसी को चंदा नहीं दिया है, तो हमें पता है ना हम कहाँ खड़े, और हम फर्म है तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, और हम ही पहले यहाँ भयभीत हो जाते हैं, वो क्या करेगा, हमको तकलीफ देगा। आप कुछ और बताना चाहते हैं?
माने घर में कोई बच्चे का जन्म हो रहा है कुछ ऐसा हो बाहर टके हुए कपड़े से वो लोग को पता लग जाता है, वो आके बाद में इतना तंग करते हैं, आधा घंटा तक गाना गाया, मैं बोला पैसा नहीं होगा, बोला यहाँ गाना गाएंगे या कर लेंगे, तुम्हारे घर में कोई भी आएगा तो हम अंदर घर में घुस जाएंगे, हमारे को 5,000 रुपया, बाद में 100 रुपया से निपटा दिया,
100 रुपया
हम तो कभी नहीं दिया, ऐसे लोग हमारे डिस्पेंसरी में हर सैटरडे को आते थे, इतने की तक नंगा होने के लिए ऐसा पढ़कर ऊपर करते थे, हमने वो पुलिस को फोन करती हूँ अभी लगाती तो भाग जाते थे।
वो समझते हैं तो कितने पानी इस बात का कोई अंत
अंत नहीं है।
मैं आपको एक सौ दुकान बोलूँगा हमारे दुकान अपना विषय रहेगा, पढ़ो ये
देखो देखो जिन पूजा की
और तक
देखो ये बात किसकी है, जिन पूजा में आने वाले विघ्नों को दूर करने का उपाय, जिन पूजा ने हम घर में तो कोई विघ्न डालने वाला नहीं, कोई सार्वजनिक पूजा होती हो उसकी बात चल रही है, और ये जब लिखा है उस जमाने की कोई परिस्थिति आपको आंखों के सामने रखनी होगी, क्योंकि श्रावकाचार में बहुत सी बातें अलग अलग श्रावकाचारों में अलग अलग जो द्रव्य काल की अपेक्षा से देश काल की अपेक्षा से वहां बताई गई है, तो जिन पूजा की संपूर्णता के इच्छुक पूजक को अन्य धर्मावलंबियों को उनके भगवान की पूजन करो या दान दो ऐसा नहीं कहा है, यथा योग्य दान सम्मान आदि के द्वारा अनुकूल बना और साधर्मियों को अपने साथ में लेकर जिन्हें भगवान की पूजन करनी चाहिए, साधर्मियों को क्योंकि इकट्ठे आप आएंगे इकट्ठे आप पूजा करेंगे तो आपका भी बल वहां होगा कि नहीं होगा, साधर्मी सब इकट्ठा मिलकर करते हैं, आगे बताएंगे। आगे कहते हैं स्नान के द्वारा शुद्ध गृहस्थ को ही स्वयं जिन पूजन करने का अधिकार है, यानी जैसे हम शुद्ध द्रव्य लेते हैं वैसे स्वयं गृह से भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर ही उसको पूजा करें। नंबर 34 ऊपर स्त्रियारंभ सेवा संक्लिष्ट स्नात्वा कंठ मथा शिर स्वयं यजेतार्हत पादान स्नातोन्येन याजयेत। गृहस्थ का शरीर और मन स्त्री सेवन तथा कृषि आदि आरंभ में फंसे रहने से दूषित रहता है, अतः उसे दोष के अनुसार मस्तक से या कंठ से स्नान करके, मस्तक से यानी सिर के ऊपर से पानी लेना और कंठ से यानी कंधे पर, मुंह तो धोता है परंतु कंधे पर से पानी लेना, स्नान करके ही स्वयं अरहंत देव के चरणों की पूजा करनी चाहिए। यदि स्नान न करे तो दूसरे स्नान किए हुए कुएं के द्वारा पूजन कराए। यदि स्वयं स्नान नहीं किया हो तो स्नान करके ही वहां पूजन करना चाहिए। विशेषार्थ, देव पूजन के लिए अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि आवश्यक है। चित्त से बुरे विचारों को दूर करने से अंतरंग शुद्धि होती है और विधि पूर्वक स्नान करने से बहिरंग शुद्धि होती है। देव पूजा करने के लिए गृहस्थ को सदा स्नान करना चाहिए, यानी स्नान करके ही देव पूजा करनी चाहिए। किंतु मुनि को दुर्जन से सू जाने पर ही स्नान करना चाहिए। देखो, मुनि को जो बताया है स्नान, वो पानी लेकर ऐसे लोटे से स्नान नहीं करते, उनका दंड स्नान कहा जाता है। और वो भी कैसे होता है कि बस एक धारा लेते हैं यहाँ पर, और वो भी बस, वो तो कहाँ कहाँ तक आए उसके अभी नियम है, वो जब अनगार धर्मामृत पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। ये हमारे जैसे मुनियों का स्नान नहीं होता, उनके तो अस्नान व्रत है। अन्य स्नान मुनि के लिए वर्जित है। क्या कहना चाहते
हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप जानते हैं कि श्वेतांबरों में स्नान होता है? स्नान
कपड़े धोते हैं?
कपड़े धोते हैं,
कपड़े धोते स्नान नहीं।
वो तो गृहस्थ धोते हैं, वो स्वयं धोते कि गृहस्थ धोते? स्वयं धोते। कभी कभी ठीक
अन्य
इन्हें बदलते भी एक हफ्ते के लिए। चलो चलो ठीक है, जो कुछ है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ कहते हैं, जिस जलाशय में खूब पानी हो और वायु तथा धूप उसे खूब लगती हो, उसमें घुस करके स्नान करना उचित है। ये मुनि की बात नहीं चल रही, यानी ये पानी प्रासुक कहलाता है, ये बात चल रही। क्या कहते हैं फिर से? जिस जलाशय में खूब पानी हो और वायु तथा धूप उसे खूब अच्छी लगती हो, उसमें घुस करके स्नान करना उचित है। परंतु किंतु अन्य जलाशयों का जल छानकर ही काम में लाना चाहिए। यानी धूप से तपे हुए जल को, या जहाँ अच्छी धूप आती है उसको ऐसे भी प्रासिक माना जाता है, वो बिना छने भी उसका यूज कर सकते हैं। ये बात यहाँ बताना चाहिए।
यहाँ पर निर्णय में हम पहुँच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ ऐसा कहते हैं कि वो जल के जल को छान के कैसा लेते हैं, जो पंचमूल स्नान होते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो पानी इट्सेल्फ जो खूब जल है, सूची में जितना सुखा है होगा ही नहीं आता है, और जिसमें वायु और धूप बहुत लगती है पासुक हो जाता है, अब जाएगा थोड़ा थोड़ा।
और अन्य जलाशयों का जल छान कर ही काम में लाना चाहिए। रत्नमाला में कहा है, ये रत्नमाला नाम का ग्रंथ है, पहले भी आई थी वो शिवकोटि रत्नमाला, ऐसे कुछ बात आई थी कि पत्थर से टकराने वाला जल दोपहर तक प्रासुक माना गया। पत्थर से टकराने, कोई गिरता होगा पत्थर से टकराता होगा, झरना का दोपहर तक प्रासुक माना गया। वापिका का तपा हुआ जल तत्काल प्रासुक है। वापिका है कुआ, तपा हुआ जल कुआ, वो बड़े बड़े विहीर कहते हैं मराठी में जिसको,
उसमें तपा हुआ जल तो ऊपर से बंद रहता है।
नहीं, वो छोटे छोटे नहीं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना, उनको अपने गांव में कभी देखे होंगे,
खुले भी रहते
हैं, खुले भी
बिल्डिंग का कंपाउंड है ना, होता है ना, उससे भी बड़े बड़े होते हैं। बिल्डिंग का कंपाउंड है उसको वापिस का कहेंगे, और वो इतना गोल रहता है, 10 फुट वाला वो तो आड़ हो गया।
तत्काल तत्काल प्रासुक है वापिका,
بولتے ہیں اس کو
بولتے ہیں
سروور
بولتے ہیں یہاں تو ہمارے میں تو نندیشور دویپ میں تو لاکھ یوجنا والی واقعہ
ہے
گاؤں میں ہے نا بڑے بڑے ہوتے ہیں
بہت بڑے
میرے پچاس پچاس فٹ والے ڈائی میٹر والے اتنے کنویں ہوتے
اور اس کے اوپر پون چکی لگائی تھی
نہیں بڑے بڑے ہو بھی آتے اس کو واپس کا کرنا یہ جل منیوں کے شوچ اور گرہستوں کے اسنان کے لیے ہوتا ہے شیش سب جل اور پراسک ہے دھرم سنگرہ شراوکاچار میں کہا ہے ندیوں اور تالابوں کا گہرا جل جو وایو اور دھوپ سے تپا ہو وہ بھی اسنان کے یوگیہ ہے ورشا کا جل پتھر اور گھٹی یتر سے تاڑک جل تتھا واپکا کا سوریہ سے تپت جل پراسک مانا گیا ہے اسنان کے پانچ پرکار ہیں پیر تک گھٹنوں تک کمر تک گردن تک اور سر تک دوش کے انوسار اسنان کرنا اچت ہے ہم کبھی باہر سے آتے تھے کیول پیر دھوتے ہیں نا تو اس کو بھی اس ٹائپ کا اسنان ملے گا جو برہمچاری ہے سب پرکار کے آرمبھوں سے نیوت ہے وہ ان میں سے کوئی بھی اسنان کر سکتے ہیں کنتو انیہ گرہستھوں کو تو سر یا گردن سے ہی اسنان کرنا چاہیے جو سب پرکار کے آرمبھوں میں لگا رہتا ہے اور برہمچاری بھی نہیں ہے اسے باہیہ شدھی کے لیے باہیہ شدھی کیے بنا دیو پوجا کا ادھیکار نہیں ہے اسنان کر کے شدھ وستر پہنے پھر شریر کو آبھوشنوں سے بھوشت کرے اور چت کو وش میں کر کے مون تتھا سنیم پورو جینیندر کی پوجا کرے شریر کو آبھوشن پتہ نہیں کیا وہ تو پہلے میں وہ پدھتی ہوگی نا گلے میں وہ ڈالنا چاہیے مالا ہاتھ میں کچھ ہمیں یہ اٹپٹا لگتا ہے بھی آج کل بہت ساری باتیں اس میں سے ایسی پتہ نہیں 35 نمبر چیتیہ آدی کے نرمان کا وشیش پھل بتلاتے ہوئے اسے کرنے کی پریرنا کرتے ہیں چیتیا لے یعنی دیرا
سر
رتیمان اب یہاں چیتیا چیتیا لے سب کہیں گے ہم پہلے شلوک پڑھیں گے نرماپیم جن چیتیا تدگرہ مٹھ سوادھیائے شالادکم شردھا شکتنروپمستی مہتے دھرمانوبندھائے یت ہنسارمبھ ویورتینام ہی گرہیناں تتا دروگالمبن پراگلبھیل سدابھیمانی کرسم سیات پنیہ چنمانسم پاکشک شراوک کو اپنی شردھا اور شکتی کے انوسار جن بمب جنالے نے مندر مٹھ سوادھیائے شالا آدی بنوانا چاہیے ابھی ہم سوادھیائے ہال کہیں گے انہیں اس کو نام کچھ الگ دیں گے یعنی پاٹھشالا چلانے کے لیے سوادھیائے کرنے کے لیے کوئی استھان کی نرمتی کریں گے مٹھ رہنے کے لیے ہوتے ہیں ورتیوں کے لیے بھی اپنے شاید وہ دھرم شالا جیسے اپنے شرم دوگلا میں دیکھے ہوئے وہ مٹھ وغیرہ ہوتے ہیں نا وہاں پر مٹھادی پتی بھی وہاں رہتے ہیں کیا کہتے ہیں منی نہیں منی تو ان کا وہار کرتے رہتے کسی ایک استھان پر قائم نہیں رہتے بس ورشا کال میں رہتے کہیں پر انیتھا وہ تو ہاں مٹھوں میں مٹھ کے ایکچولی وہ پرانے زمانے میں مٹھ تو ہوتے ابھی بھی وہ شرون بیگولا میں مٹھ وغیرہ ہے وہاں دھرم شالا ہی یا ورتی جا کے وہاں رہتے ہوں گے نا جیسے ہم پروشد اپواس وغیرہ کہتے ہیں ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے وہاں دھرم
شالا اور اپاسرام یہ ٹھہرے تھے اپاسرام خالی وہی ٹھہرتے ہیں
वैसे ही मठ का है, ऐसे रेगुलर धर्मशाला नहीं कहेंगे उसको, नहीं नहीं उसको मठ नहीं कहते। क्योंकि ये सब बड़े भारी धर्म के अनुबंध के लिए होते, अर्थात इनसे जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होती है। क्या कहते हैं, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होती है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा होती है, और जो रक्षित है उसकी वृद्धि होती है। क्योंकि हिंसा प्रधान कृषि आदि आरंभ में, एक कृषि आदि का हमने स्वरूप देखा था याद है ना, वो असी मसी कृषि व्यापार वगैरह जो हमने छह प्रकार का आजीविका के जो साधन है उसके करते हुए हिंसा तो होती है, यही बात कह रहे हैं। हिंसा प्रधान कृषि आदि आरंभ में, यानी उसके लिए जो कोई कार्य करते हैं उसमें हिंसा होती है। निरंतर लगे रहने वाले पाक्षिक श्रावकों का मन इन जिनबिंब आदि तथा इनके समान तीर्थ यात्रा आदि जो सम्य दर्शन की विशुद्धि के अंग है, यानी उसमें तो विशुद्धि बढ़ती रहती है, जो सम्य दर्शन तो है उसके, परंतु तीर्थ यात्रा कहो जिनबिंब की प्रतिष्ठा आदि कहो ये विशुद्धि के अंग है। उन आलम्बनों की प्रवृत्ता से अनुभव में आने वाले अहंकार से अनुरक्त हर्ष से, ये अहंकार यानी वो ये गर्व वो नहीं लेना है, अहंकार यानी वो तो देखो ये अच्छे अर्थ में लिया, देखो उन आलम्बनों की प्रवृत्ता से अनुभव में आने वाले अहंकार से अनुरक्त हर्ष से पुण्य का संचय करता है,
धर्मानुराग,
हाँ उसको अच्छा लगता है वो करने में, ऐसा गौरव ले लो, अथवा निर्मल अनुभूति को करता है, यानी विशुद्धि बढ़कर वो अपनी अनुभूति को बढ़ाता रहता है। विशेषा पाक्षिक श्रावक विशेष रूप से तो अपने कृषि व्यापार आदि में ही फंसा रहता है, और इन गार्हस्थिक कार्यों में, इन गृहस्थ के योग्य कार्यों में हिंसा अवश्य होती है। अतः जो अशुभोपयोग में फंसे रहते हैं उनका धर्म तो शुभोपयोग ही, यानी पहले अशुभोपयोग से हटाकर उनको शुभोपयोग की बात बता रहे। जिनबिंब जिना मंदिर स्वाध्यायशाला वगैरह धर्म के साधन है, साधारण श्रावक इन्हीं के द्वारा धर्म का प्रारंभिक पाठ पढ़ता है, इसी से आगे बढ़कर वह उत्तम श्रावक और मुनि बनता है। अतः भोगोपभोग में धन को व्यय करने वाला श्रावक यदि धर्म की परंपरा को कायम रखने वाले और उसे चलाने वाले धार्मिक कार्यों में धन खर्च करता है तो उसे इससे एक प्रकार का मानसिक आनंद मिलता है। वो ऊपर बताए ना अहंकार ने, वो मानसिक आनंद उसे यह अनुभव करके परम हर्ष होता है। उसने अपने द्रव्य का उपयोग धर्म कार्यों में, ऐसे कार्यों में जो दर्शन विशुद्धि में निमित्त होते हैं, किया है। इससे उसे पुण्यबंध तो होता ही है, यदि वह ज्ञानी हुआ तो इसी आनंद में उसे आत्मानुभूति भी हो सकती है। विशुद्धि बढ़ती है और उपयोग अपने में ले जाए तो उसकी आत्मानुभूति भी बढ़ती रहती है। यद्यपि आरंभ में हिंसा होती है और हिंसा से पाप होता है, तथापि ये कौन से आरंभ, हाँ ये कोई हॉल बन, स्वाध्याय हॉल बनाना है, जिना मंदिर बनाना है, जिना चैत्यालय वो प्रतिष्ठा आदि करना, उसमें भी आरंभ तो होगा ना, इतने लोग आएंगे इतना आयोजन होगा तो वहां पर भी हिंसा तो होगी अवश्य। तो कहते फिर भी तथापि इस आरंभ को करने वाला महान पुण्यबंध करता है, तथा धर्म की स्थिति किसी आलंबन के बिना संभव नहीं है। अतः महापुरुषों ने जिनालय को मुक्ति का सोपान कहा है। पंडित आशाधर जी के पहले आचार्य अमित गति, आचार्य पद्मनंदी, आचार्य वसुनंदी आदि ने मंदिर और मूर्ति निर्माण पर बहुत जोर दिया है। आचार्य अमित गति ने कहा है, जो जिनेन्द्र की अंगुष्ठ प्रमाण भी मूर्ति बनवाता है उससे अविनाशी लक्ष्मी दूर नहीं है। वसुनंदी और पद्मनंदी ने उनसे भी आगे बढ़कर कहा है, जो कुंदुरु के पत्ते के बराबर जिनालय और उसमें जौ के बराबर प्रतिमा का निर्माण कराते हैं उनके पुण्य का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। यह तत्कालीन परिस्थिति की पुकार है, उस जमाने की बात। कुंदरू ने कोई छोटा पत्ता होगा अभी उनके हुआ, शायद वो कुंदन नाम के फूल होते हैं ना, नहीं जायज हुई है जैसे कुंद नाम के फूल होते हैं वैसा उसका होगा शायद कुंद कड़ा। आचार्य पद्मानंदी ने अपने समय का चित्रण करते हुए लिखा है, इस दुष्मा नाम के पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म क्षीण हो गया है, साधन निजन बहुत थोड़े हैं, मिथ्यात्व रूपी अंधकार बहुत फैला है, ऐसे में जो जन्मी में और जिनालय में भक्ति रखता हो वह भी दिखाई नहीं देता। ये किसी विशिष्ट काल में ऐसी बातें बनती रहती होगी बीच बीच में, जैसे हम मुस्लिमों ने इतने मंदिरों का वो खंडन किया था, मूर्ति भंग की थी, ये कौन से एक हुए थे ना श्रेष्ठ पूरे हिंदुस्तान में लाख के ऊपर उन्होंने प्रतिमा जी विराजमान की गांव गांव में, अभी मैं उसका नाम भूल गई, हाँ है ना, वो तो पहाड़ों में वो उत्कीर्ण तो है ही है परंतु वो सारे भंग की हुई ना, तो ऐसे कोई एक दानी हुए शेख कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लाख के ऊपर मूर्तियां विराजमान की गांव गांव में ले जाकर, यानी किसी विशिष्ट काल में कोई प्रसंग वर्ष ऐसा बनता है कि वो कोई जिन बिंब जिनाले भी नहीं है, तो उसकी अपेक्षा ये बात बताते हैं। मैंने बोला ना जो जिस काल में जैसी परिस्थिति है वैसा वहां उपदेश में आ जाता है। तो कहते इस दुष्मा नाम के पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म क्षीण हो गया है, यानी जिन धर्म से अन्य मता उनकी तो बहुलता हो गई, साधर्म ही जन बहुत थोड़े। हाँ
स्वामी जी के निमित्त से मुंबई में 5 मंदिर,
हाँ ना, और सौराष्ट्र में जहाँ कुछ नहीं थे वहाँ 29 मंदिर बने, 29-30 मंदिर, वहाँ तो दिगंबरों के तो कुछ थे नहीं विशेष, श्वेतांबरों के तो फिर भी थे,
और उसका निमित्त ही कहूंगा मैं भी दिगंबर मंदिर
क्यों कच्छ में वही एक है,
कच्छ में एक ही है क्यों उनके निमित्त उनका भी बहुत बड़ा फोटो आ रहा
है, यानी उनके द्वारा बताया हुआ जो कुछ तत्व ज्ञान है उसका स्वाध्याय करने के पश्चात उनकी महिमा आई और वहाँ उनके हाँ वैसे हो यहाँ कहते साधर्मी जन बहुत थोड़े हैं, मिथ्यात्व रूपी अंधकार बहुत फैला है। देखो हम तो अपने साधर्मियों के साथ ही हमारा अधिकतर व्यवहार चलता है, इसलिए हमें तो सब जगह साधर्मी साधर्मी दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जाते भी है तो प्रतिष्ठाओं में चले जाएंगे, धार्मिक आयोजनों में, मैं हमारी बात कर रही हूँ, अन्य तो लौकिक में तो हम ज्यादा शादी ब्याह में तो जाना बंद किया, आज कितने 15 साल हो गए, लौकिक में ऐसे जहाँ बहुत समूह इकट्ठे होते हैं वहां तो जाते नहीं, और जहां जाते अपने साधर्मी मिलते। यहाँ क्या बात हो रही है कि साधर्मी जन बहुत थोड़े, अभी हम आम अन्य लोगों की बात करें तो कितने जैनी मिलेंगे उनको, जहाँ व्यापार कर रहे हैं, जो कोई नौकरी कर रहे हैं वहां तो अन्य मतियों की बहुलता है, कहीं आना जाना होता है वहां पे उनकी बहुलता होती है, स्कूल में कॉलेज में उनकी बहुलता होती है। तो ऐसे में जो जिनबिंब और जिनालय में भक्ति रखता है वह भी दिखाई नहीं देता, फिर जो विधि पूर्वक जिनबिंब और जिनालय का निर्माण कराता है वह वंदनीय है, यानी सराहनीय है, वंदनीय है, क्योंकि ये श्रावक की बात चल रही है। आशा दर्जी के समय में तो मारवाड़ में साहबुद्दीन गोरी का आक्रमण हो गया था, फिर भी उन्होंने पत्ते बराबर मंदिर और जो बराबर मूर्ति बनवाने की बात नहीं कही, यानी पहले वाले आचार्य ने कही थी, इन्होंने उस पर कुछ जोर नहीं दिया, तथा जिनबिंब और जिन मंदिर के साथ साधुओं के निवास स्थान और स्वाध्याय शाला ने ग्रंथागार भी बनवाने पर जोर दिया, वह उनकी दूरदर्शिता का परिचायक। ये विशेषार्थ आगे कलिकाल की निंदा करते हैं, ये 36 नंबर है। दिग्दुषमा कालरात्रिम यत्र शास्त्रदृशामपि चैत्यालोकादृतेन स्यात् प्रायो देव विशामति। इस पंचम काल रूपी मरण रात्रि को धिक्कार हो जिसमें शास्त्र ही जिनकी आंखें हैं, प्राय उन विद्वानों की भी अंतकरण प्रवृत्ति देव दर्शन के बिना अन्य की शरण न लेकर एकमात्र जिन देव को ही भजने वाली नहीं होती। क्या कहते हैं, यानी बड़े बड़े विद्वान जिनका शास्त्रों का बहुत अभ्यास है वो भी ऐसे नहीं रहे कि मात्र जिन देव को ही मानेंगे, वो भी सर्वधर्म समभाव वाले हो जाते। कहते हैं विशेषात् सच्चा जिन भक्त वही है जो एकमात्र जिनेन्द्र देव को ही अपना शरण मानता है, जो उनके सिवाय किसी अन्य देव को शरण मानता है वह सच्चा जिन भक्त नहीं है। यहाँ किसी अन्य मति से द्वेष करने की बात नहीं है, परंतु हम जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप नक्की करते हैं तो वे ही एकमात्र यानी भगवान आप तो हो सकते हैं, अन्य मतियों के जो है वो तो कल्पनाएं मात्र है, ऐसे कोई व्यक्ति है ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे कोई व्यक्ति हुए थे और उनको ये पूज रहे हैं, अभी वो तो कुछ हमारे तुम्हारे जैसे कोई आदमी हो गए जिन्होंने लोक सेवा बहुत की है, उनको भी भगवान करके मुकुट चढ़ा के बिठा है, वो बात अलग है, परंतु अन्य तो उनके बहुत सारी है तो कपोल कल्पना ही है। जो कहते हैं ईश्वर ने इस विश्व को निर्माण किया और उस ईश्वर का जो रूप बनाते हैं दिखाते हैं बताते हैं, मेरी भाषा में कहना है तो उस ईश्वर को मनुष्य ने निर्माण किया अपनी कल्पना में, ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ना कोई ऐसा ब्रह्मदेव है चार मुख वाला, न ये सारी कल्पना है उनके दत्त हो ब्रह्मदेव हो, ये उनकी जो कहानियां बताते हैं हमें तो इतना मालूम नहीं है, उनके मत वाले जो उनके धर्म वाले हैं उन्हें को इनकी कहानियां मालूम है और वो भी इन कहानियों के विरुद्ध बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना घिनौना कैसे हो सकता है कि वो उसको हम देव माने, ऐसी बातें वो स्वयं करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, सच्चा जिन भक्त वही है जो एकमात्र जिनेन्द्र देव को ही अपना शरण मानता है, जो उनके सिवाय किसी अन्य को देव को शरण मानता है वह सच्चा जिन भक्त नहीं है। जैन परंपरा में ऐसे भी विद्वान भट्टारक आदि हुए हैं और आज भी है जो शासन देवताओं की उपासना के पक्षपाती रहे, यह भी कलिकाल का प्रभाव है। विद्वान कहा, विद्वान भट्टारक कहा, शासन देवता ने कौन, हर एक तीर्थंकर की जो कोई भक्त देवताएं होती थी ना शासन देवता कहते हैं उनको, जैसे पद्मावती है, कुष्मांडी है, अन्य अन्य जो नाम आपने 24 तीर्थंकरों के 24 नाम मिलेंगे हमें, ये तो इसमें तो पद्मावती फेमस हो गई है ना, तो कहते उसके पक्षपाती रहे यह भी कलिकाल का प्रभाव, मात्र जिनेन्द्र भगवान जो वितरागी सर्वज्ञ उन्हीं की पूजा की जाती है, ये तो देवता जो है शासन देवता जिसको कहते हैं वो तो उनके भक्त है, उनकी पूजा करने का कहीं उपदेश नहीं है। तो कहते विद्वान होकर भी ऐसा कर रहे हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं होते, इसमें भी बताया कि सभी तो ऐसे नहीं है, जैसे हमने वो कारंजा के वो भट्टा रखी उस बात सुनते ना, वो समय ज्ञान दीपिका लिखने वाले कौन से ब्रह्मचारी कौन थे, वो समय ज्ञान दीपिका धर्मदास शुल्ल उनको वो तो व्रत धारण किए थे, समय तो आता पता नहीं था और बस व्रतों में इतना अभिमान हुआ था, लोग भी पूछते थे उनको क्योंकि इतने भी व्रतों के धारण किए तो बहुत महात्मा हो गए करके, बहुत आदर सम्मान होता था जगह जगह, और फिर उनके पास पहुंच गए वो बहु भट्टारक के पास, वो कहाँ के थे, कारण जाके थे पट्टाधीश वहां के भट्टारक, तो इसी बात बात में तो उन्होंने बताया सिद्ध भगवान को पूजा करता है, सिद्ध को अपने सिद्ध समान को देखा कि नहीं देखा, वो क्या होता है, तो तू अंधा है कह दिया था उन्होंने, ढूंढ तू, तो ऐसे 12 साल भटके वो कहीं कहीं, वो हम जाते रहे ना इधर से उधर उधर से उधर, फिर लौट के आए वहां पर, तो उन्होंने एकदम ऐसे बोल दिया कि तू अंधा है देखने वाले को नहीं देखता है, तो उनको वो बात बहुत चुभ गई, फिर उस पर अभ्यास भी किया, विचार भी किया और उनके फिर बाद में समय दर्शन, उन्होंने स्वयं लिखा है, बाद में उनको समय दर्शन हुआ और फिर वो पता चला कि ये जो मैं पूजन करवा था वो कितना गलत है, क्या है वो सब उनकी पुस्तक में लिखा है ये सब। तो ये ऐसे ज्ञानी भी भट्टारक थे कुछ, परंतु ये तो बहुतांश ऐसी बात बनी थी। ये है ना जिन वक्त वही एकमात्र जिन देव को ही अपना चरण मानता है। हम पुणे में वो शिविर करते थे, आपको पता होगा 96-97 के आसपास हमने 8 बार शिविर लिए थे वहाँ पंडरपुर से। कुछ एक बच्चा आता था उसके अपने दादा के साथ दादी के साथ, तो वहां तो कितना पंडरपुर का है, तो वो अपने गांव में जाने के बाद की बात है, उसके माँ ने बाद में बताया हमें दूसरे शिविर के टाइम बताए कि उनके गांव में भट्टारक आया था, 6-7 साल का रौनक नाम था। तो भट्टारक आए थे तो सभी अभी जैनी इकट्ठे हो गए वहाँ, क्या होता है अभी अन्य मतियों का वो वहाँ कोल्हापुर का वो मंदिर है ना, पंडरपुर का विठल बाबा, तो वहाँ गए हो गए। तो वहाँ उन्होंने कुछ पैसे रखे उसके सामने, तो ये छोटा बच्चा सब पूरे इतने सभा में बोला ये आप उनके सामने क्यों पैसे चढ़ाते, ये तो मिथ्या दृष्टि है। तो उसकी माँ घबरा गई, अरे चुप चुप करके उसको, इतने छोटे बच्चे को भी जो सुनते हैं बच्चे भी इतना निर्णय कर सकते, ऐसे नहीं कि वो क्या समझेगी, वो तो बहुत अच्छा समझते हैं, एक बार जो पकड़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसका पालन भी करते हैं। ये तो बच्चों को ही सिखाने जैसी बातें हैं, उस उम्र में जो पकड़ते हैं ना बच्चे।
हाँ
देखो, हाँ छोटे बच्चे बहुत
उसकी
ये बदनामी में सच्ची, अभी बदनामी यानी कौन उसको खराब कहेगा, अज्ञानी जन कहेंगे, परंतु वो तो उसका तो बहुत सुधर गया ना, उसको तो इतना तो निर्णय इतनी छोटी उम्र में। हमें तो बच्चों को ही पहले पकड़ना चाहिए, फिर बड़े बच्चे हो जाते बाद में सिखाना चाहते तो कहते हमारी कोई मानता नहीं है। अभी बहुत जगह ये प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे बच्चे भी बड़े हुए उनको कैसा सिखाए क्या करे, अमेरिका में भी बहुत सारे पूछते, हमने बोला उनकी बात छोड़ दो उनके ऊपर, अभी जो अगली पीढ़ी है आपकी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको पकड़ो, भले वो 1 साल का हो कि 1.5 साल का हो कि 2 साल का हो, अरिहंत सिद्ध बोलना सिखाओ उनको, और भी बातें सिखा दो, सीख जाएंगे। तो उस उम्र से उनको अगर हम ट्रेन करेंगे, उनके ऊपर संस्कार डालेंगे, उनको कुछ बातें बताएंगे तो पकड़ लेते हैं।
ये मामा का बेटा जो है सोहम, अभी 1-2 साल तक था और छोटा हुआ उसी के आसपास का, तो रोता है तो उसकी मम्मी फोन करवाती है, करती थी, देखो देखो रो रहा है, तो जय जिनेंद्र बेटा कहते हो तो ऐसा रोते रोते बोल सकते,
यानी अभी इतना बड़ा है फिर भी जय जिनेंद्र कहेगा फिर आगे की कुछ भी बातें बताएं, यानी ये तो हम इतनी छोटी छोटी बातें भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं सिखा सकते हैं, है ना। अभी दोनों का है अभ्यास तो, वो तो बच्चों पर भी ऐसा संस्कार हो जाता है, और बच्चे तो हमारे आचरण से ही सीखते बहुत सारी बातें, अनुकरण करते वो देखते कैसे बोलते हैं कैसे रहते हैं कैसे नहीं, जो आचरण की बातें हैं ये तो उनका ऑब्जर्वेशन तो बहुत होता है, कितनी बारीक बारीक बातें भी वो सीख लेते हैं। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, जैन परंपरा में 4th-5th लाइन है, सदा ऐसे मुनिराज होते आए हैं जो ज्ञान और वैराग्य में तत्पर रहते हुए जिन दर्शन के बिना भी परमात्मा को ही अपना शरण मानते हैं। निश्चय ऐसे तो कोई भी किसी का शरण नहीं है, रत्नत्रय आत्मा ही आत्मा का शरण है, इस तरह की श्रद्धा के लिए गृहस्थ विद्वान को भी प्रतिदिन देव दर्शन करना आवश्यक है। क्या लिखा? जिनेन्द्र भगवान की पूजन दर्शन आवश्यक है। आगे कहते हैं कि कलिकाल में धर्म स्थिति का मूल जिनालय ही है। 37 नंबर। प्रतिष्ठा यात्रादि व्यतिकर शुभ स्वैर चरण स्फुर धर्मोद्धर्ष प्रसर रस पूरास्त रजस कथम स्यु सागारा श्रमण गण धर्माश्रम पदम नयत्रार्हत गेहम दलित कलिलीला विलसितम। देखते इसका अर्थ नीचे। जिस नगर आदि में कलिकाल की लीला के विलास को नष्ट करने वाला, क्या कहते हैं ये विशेषण है कलिकाल, यानी अभी ये पंचम काल को कलिकाल कहा, उसकी लीला के विलास को नष्ट करने वाला, यानी कलिकाल में लोगों की वृत्तियां कैसी कैसी होती हम सब आप जानते हैं, तो कहते उसको नष्ट करने वाला। ये किसका विशेषण है? जिन मंदिर का और मुनि संघों के धर्म साधन के लिए निवास स्थान जिन मंदिर नहीं है, उन स्थानों में प्रतिष्ठा यात्रा आदि महोत्सवों में होने वाला जो मनोवचन काय का शुभ व्यापार और उससे होने वाला जो धर्मोत्साह, वही हुआ जल प्रवाह। उस प्रवाह से जिनकी पाप रूपी धूली दूर हो गई है, ऐसे ग्रस्त कैसे हो सकते हैं? आशय यह है, अभी इसका पूरा क्या मतलब है बताते हैं, कि जिन मंदिर होने से प्रतिष्ठा पूजा अभिषेक आदि के आयोजन होते हैं। यानी जहाँ कोई मंदिर नहीं था वहाँ नया मंदिर बनने से क्या होता है, वो तो प्रतिष्ठा में तो माहौल ऐसा बन जाता है, पूजा अभिषेक की परंपरा शुरू हो जाती है। उन धार्मिक आयोजनों में सभी स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, इससे उनका धर्मोत्साह बढ़ता है, उससे उनके पाप कर्मों की शांति होती है। किंतु जहाँ जिन मंदिर नहीं होता वहां कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होता, फलतः गृहस्थों की धार्मिक भावना में ज्वार भाटा आने का कभी प्रसंग नहीं होता, इन्हें कभी वो पढ़ने का कोई मौका नहीं है। आचार्य पद्मनंदी ने कहा है, चैत्यालय के होने पर भव्य लोग यात्राओं अभिषेकों सैकड़ों महान उत्सवों पूजा विधानों चंदोवों नैवेद्यों उपहारों ध्वजाओं कलशों गीतों वादित्रों नृत्यों जागरणों घंटा चामर दर्पण आदि के द्वारा उत्कृष्ट शोभा का विस्तार करके निरंतर पुण्य का संचय करते हैं। यानी जहाँ चैत्यालय का निर्माण होता है वहाँ ये सभी बातें बनती हैं। हम अभी राघोगढ़ गए थे ना, कभी जनवरी में गए थे ना हम, कब तो गए थे, जनवरी में ही था राघोगढ़ का वो पंचकल्याण। इतना छोटा गांव है, इतना बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया उन्होंने, बहुत ही सुंदर, और वो करने वाले भी मुख्य जिन्होंने उसमें भाग लिया था, तो वो अभी उनकी उम्र कुछ 80-85 हो गई, और गुरुदेव के जमाने में उन्होंने वहां के मंदिर निर्माण होते हुए देखा था, वो 18-20 साल का युवान था तभी, और तभी मन में ठान ली कि अपने गांव में ऐसा कोई मंदिर होना चाहिए, परंतु ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं तो उस जमाने में। तो बहुत अच्छा बना वहां पर, वहां विशेषता इतनी हुई कि अभी तो हर गांव में दो दो पंथ पड़े हैं, कहीं ये मत वाले वो मत वाले वैसे, परंतु इसके लिए सभी इकट्ठे हुए, उन लोगों ने भी अपने अपने पोस्टर लगाए, वो भी सब ज्वाइन हुए, सबने मिलकर ये, यानी करने वाले तो यही लोग थे सभी, परंतु सभी श्रावक इसमें इकट्ठे, आजू बाजू के इतने हजारों लोग इसमें आए थे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत बड़े पैमाने, इतना छोटा गांव मगर बड़े बड़े शहरों में भी इतना नहीं हो सकता, इतना वहां बढ़िया बना था।
लोगों ने
इतनी क्या बात है, वहां की पद्धति ऐसी है कि جلوس کہاں نکلا تھا؟ ناگپور میں نہیں، وہیں پر لکھا نا، بہتوں نے آگے آرتی وغیرہ اتاری ہے آ کے، کون سے گاؤں میں؟ اس میں تھے کہ وہ ناگپور کے پاس؟ اچھا وہیں ادھر ہی تھے، پہلے وہ پورا جلوس نکالتے تھے نا، یعنی وہ پرتشٹھا میں پورے گاؤں، پرانے مندر کے مورتی لے کے پورے گاؤں میں، اور پھر وہاں منڈپ میں جا کے وراجمان کی تھی، وہ پالکی جیسے نکالی تھی، تو اتنا جیسے پانچ پانچ دس دس قدم پر ہر ایک جن اپنے گھر کے سامنے جا رہے اور ان کی آرتی اتارے یا جو کوئی نارل ایسا کر کے جو کچھ ہے، انیمتی شوتامبر سبھی براہمن ہو انیمتی ہو سکھ ہو سبھی لوگوں نے، یعنی اتنا اس میں گاؤں میں ماحول ہوا تھا، ایسا کہیں دیکھا نہیں تھا۔
وہ لوگ سوئم کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرتے تھے کہ
نہیں، انہوں نے سوئم بھی ان کی اور سے سوئم آ کر بھی انہوں نے، آگے بڑھیں گے، آگے کہتے ہیں کلی کال میں منیوں کا بھی من وستیکا کے بنا ستھر نہیں رہتا، یہ اس زمانے کی بات ہوگی، ابھی پتہ نہیں آج کیا کیا ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے مٹھ کہتا ہوں میرے خیال سے وستیکا، اوپر پہلے شلوک پڑیں گے، منو مٹ کٹھیراں ویاتے وانوستھیا چیکشپیمانم نادیتوے کرمتے دھرم کرمسو، اس پنچم کال میں وایو منڈل کے دوارا اڑتی ہوئی روئی کی طرح چنچل ہوا، کیا کہتے ہیں وہ روئی کے کپاس کے جھاڑ دیکھے کیا، یا وہ سیوری کا ورکش ہوتا ہے، وہ اس کی روئی تو اڑتی ہے ہوا کے جھکڑے سے، تو کہتے ایسی چنچلتا کے لیے اس کا ادھارن دیا، چنچل ہوا جنگل واسی منیوں کا بھی من وستیکا کے بنا دھارمک کریاؤں میں اتساہت نہیں ہوتا، اوپر لکھا منو مٹھ کٹھیرانا، یہ مٹھ کا ارتھ آپ پوچھ رہے تھے نا، یہ منیوں کے جو وستی استھان ہے اسی کو مٹھ کا وشیشار، پراچین سمے میں، اب ہمارے لیے وہ 800 ورش پراچین ہے بھی، وہ بھی کہہ رہے پراچین سمیوں میں، یا یہ لکھنے والے تو یہ ہے نا کیلاشن جی، منی ونوں میں رہتے تھے، رتن کرن شاوکاچار میں 11ویں پرتیما دھاری کو گھر چھوڑ کر منی ون میں جانے کا نردیش ہے، دھیرے دھیرے منیوں کا نواس گرام نگروں میں ہونے لگا، آچاریہ گن بھدر نے اپنے آتما انوشاسن میں اس پر کھیل پرکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے رات کے سمے بھیت مرگ بھیت نے بھے بھی ڈرا ہوا مرگ ون سے نگروں کے نکٹ آ جاتے ہیں، اسی طرح کلی کال میں تپسوی بھی نگروں میں رہنے لگے ہیں، تب ان کے نواس کے لیے شراوک لوگ گفا وغیرہ بنانے لگے، کرتریم گفائیں بناتے ہوئے، اس کے بنا سادھوؤں کا چت بھی دھرم میں نہیں لگتا، اتہ مندروں کی طرح سادھوؤں کے ٹھہرنے کا ستھان بھی بنانا چاہیے، اس لیے وہ وستیکا بنانے کا تبھی سے شروع ہوا ہوگا شاید۔ آگے کہتے ہیں کہ سوادھیا شالا کے بنا گروؤں کے بھی شاستر گیان میں کمی آ جاتی ہے، 39 ونے ود ونی ترنام اپی سوادھیا شالیا ونا ومرش شونیادھیر درشتے پیندھایتے دھونی، دیکھو اس کا ارتھ دیکھتے ہیں، سوادھیائے شالا کے بنا ششیوں کی طرح گروؤں کی بھی وچار شونیہ بدھی دیکھے ہوئے بھی شاستر یا موکش مارگ کے سمبندھ میں اندھے کے سمان آچرن کرتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سوادھیائے شالا کے بنا ششیوں کی طرح گروؤں کی بھی وچار شونیہ بدھی دیکھے ہوئے بھی شاستر یا موکش مارگ کے سمبندھ میں اندھے کے سمان آچرن کرتے ہیں، دیکھے ہوئے شاستر نے پڑھے پہلے پڑھایا پھر بھی بارمبار ابھیاس نہیں نا، ارتھات شیشیا کی تو بات ہی کیا، پڑھانے والے گرو بھی یدی شاستر چنتن نرنتر نہ کرے تو وہ بھی تتو کو بھول جاتے ہیں، الٹا سیدھا بتلانے لگتے ہیں، اس لیے سوادھیائے شالا اتینت آوشک، پڑھانے والوں کے لیے بھی بتاتے ہیں، وہ بھی سوئم ادھیئن کرے اس کا، आगे कहते हैं, दया के योग्य प्राणियों के लिए भोजनशाला औषधालय आदि भी बनवाना चाहिए। 40 नंबर। सत्रमप्यनुकंप्यानां सृजेदनुजिघृक्षया चिकित्साशालवद्दृश्येन निज्जायै वाटिकाद्यपि। भूख प्यास और रोग से पीड़ित गरीब प्राणियों का उपकार करने की इच्छा से औषधालय की तरह भोजनशाला भी बनवाना चाहिए तथा पूजा के लिए बगीचा बनवाने में भी दोष नहीं है। जो फूल आदि चढ़ाते उनके लिए बगीचा बनवाने का भी, परंतु बगीचा वगैरह उसमें तो हिंसा का दोष लगता है। वैसे तो हम तो फूल और फल चढ़ाने के भी निषिद्ध मानते हैं। अभी जो दो प्रवृत्तियां चली है पूजा पद्धति, वो जो चली आई है वो चलती रहती है कहीं कहीं। विशेषण, यह सब पाक्षिक श्रावक के लिए कथन है। पाक्षिक श्रावक जब विषय सुख के लिए कृषि आदि कर्म करता है तो उसे परोपकार की भावना से भूख से पीड़ित जनों के लिए निःशुल्क भोजन प्राप्ति का स्थान तथा रोगियों के लिए चिकित्सालय वगैरह भी बनवाना चाहिए। ग्रंथकार ने पूजा के निमित्त पुष्प प्राप्त करने के लिए बगीचा लगाने में भी दोष नहीं बताया है। तथापि वह बगीचा न लगाकर और बाजार से पुष्प खरीदकर उनसे पूजा करना उत्तम मानते हैं। पुष्पों में होने वाली अशुद्धि तथा हिंसा के कारण उत्तर काल में अक्षतों को पीला रंग कर उनमें पुष्प की स्थापना की गई। ये बाद में ये पद्धति बनी है वो हिंसा टालने के लिए। अब हम यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान है सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।